علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس آئی ایس او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات. قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 139 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آپ برادران نے، آئی ایس او کے دوستوں نے اور برادران نے اس کنونشن کا جو عنوان رکھا ہے، حمایت مظلومین جہاں اور آزادی قدس کنونشن، کہ قدس کی حمایت اور قدس کی آزادی کے لیے ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، کسی بھی طریقے سے کوشش کرنا، در حقیقت وہی حمایت مظلومین جہان کی ایک شکل ہے. دنیا کی ایک واضح طور پر مظلوم قوم کہ جو سال ہا سال سے صہیونی حکومت کے مظالم کا شکار ہے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانا اور ظالم اور غاصب صہیونیوں کو یہ بتانا کہ جو تم چاہتے ہو ابھی تک وہ نہیں ہو سکا تم سے، اور جو تم چاہتے ہو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا تم سے، جب تک اپنے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، حقیقی ایمان رکھنے والے روح زمین پر موجود ہیں، تمہارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ کیجئے، چند قرآنی نکات، چند قرآنی نکات اس وقت میں کہ جو مجھے دیا گیا ہے آپ دوستوں کی، آپ برادران کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے میں پورے یقین کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی توفیق دی ہے کہ آپ اپنی عین نوجوانی میں اور عین جوانی میں، جو انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی. البتہ آپ میں قابلیت دیکھی تو آپ کو توفیق دی. اللہ کے ہاں اندھی تقسیم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی جب توفیقات بھی دیتا ہے تو سامنے والے کی قابلیت دیکھ کر دیتا ہے، کس کو توفیق دینی ہے، کس کو توفیق نہیں دینی، اور کس کو کتنی توفیق دینی ہے. یہ انسان کی اپنی قابلیت ہوتی ہے اور اس قابلیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی توفیقات عطا کرتا ہے. آپ کو خدا نے بڑی توفیق دی ہے کہ آپ اس آئی ایس او کے کارواں میں شامل ہیں. ہمارے ایک دوست تھے عالم دین جو پاکستان سے باہر کسی ملک میں چلے گئے، और वहाँ से जब एक दफ़ा ईरान आए हुए थे, हम भी उस वक़्त ईरान में मौजूद थे, कुम में पढ़ते थे, तो वो ईरान से अपने जिस मुल्क में वो रहते थे वहाँ से ईरान आए हुए थे, तो उनकी मुलाकात रहबर मुअज़्ज़म के साथ हुई। और उस मुलाकात का जो उन्वान था वो उस मगरबी मुल्क जहाँ वो रहते थे वहाँ उनकी क्या फ़ालियत है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन के हवाले से मुलाकात थी रहबर के साथ। लेकिन उन्होंने ख़ुद बताया मुझे, चूँकि दोस्ती थी करीबी, जब मिले उस मुलाकात के बाद तो मुझे उन्होंने बताया कि जब सारी मेरी एक्टिविटीज़ जो थी उनके बारे में जो मैंने रिपोर्ट देनी थी वो दी, बातचीत की, तो जब मैं उठ के वो मुलाकात ख़त्म होने लगी तो रहबर मुअज़्ज़म ने मुझसे फरमाया कि पाकिस्तान भी, चूँकि वो पाकिस्तानी थे, बेसिकली पाकिस्तानी थे, अजान के एहतराम में ज़रा चंद मिनट खामोशी इख्तियार करते, बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। तो उन्होंने बताया कि जब वो मुलाकात तमाम होने लगी और मेरे उठने से पहले रहबर मुअज़्ज़म ने मुझसे फरमाया कि तुम पाकिस्तान भी आते जाते हो, तो मैंने कहा कि जी पाकिस्तान भी मेरा चक्कर लगता है। तो ये मीटिंग का मौजू नहीं था, मीटिंग का मौजू और था, लेकिन ये ख़ुद से रहबर ने फरमाया। और कहते हैं कि मुझसे रहबर ने फरमाया कि अगर पाकिस्तान आते जाते हो तो आईएसओ के साथ, आईएसओ के बिरादरान के साथ, लड़कों के साथ, तो लाभ के साथ ज़रूर राबता रखा करो। तो इस बात को आप समझिए कि रहबर की ये तवज्जो आप बिरादरान की तरफ, आईएसओ की तरफ, किसी दुनियावी गरज या दुनियावी सबब की वजह से नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स के जो एक दीन की जिम्मेदारी लेकर एक जगह बैठा हुआ है, वो दीन के जो अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए भेजा था, अब उस दीन का हकीकी खालिस दीन इस्लाम का परचम लेकर, यानी अल्लाह ने जिसके हाथ में सपुर्द किया है, वो जो भी हो, जब ये परचम उसके हाथ में आएगा तो वो पूरी दुनिया में एक दफ़ा निगाह दौड़ाएगा कि कहाँ कहाँ से इस तहरीक को मदद और हिमायत मिलनी है, इसी निगाह से देखेगा। इस निगाह से दुनिया को नहीं देखेगा कि मैं कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरा माल ज़्यादा हो जाएगा और इक्तसादी फ़ायदे ये हो जाएंगे और फलान हो जाएंगे। एक खालिस दीन की सरबलंदी चाहने वाला वो जिस भी चीज़ को देखता है, जिस भी तंजीम को, जिस भी तहरीक को, जिस भी इलाके को, इसी उम्मीद में और इसी निगाह से उसको चेक करता है, कंघालता है कि इस मेरी तहरीक को कौन लोग मदद फराहम कर सकते हैं, हिमायत फराहम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर गोया के रहबर मुअज़्ज़म की निगाह आप बिरादरान पर, और हकीकत भी है, इंसान को जहाँ से उम्मीद हो वही उसको याद भी होता है, और जहाँ से उम्मीद ही ना हो फिर उनकी तरफ इतनी तवज्जो भी नहीं होती। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि रहबर किस एतबार से देख रहे हैं इधर कि आप नौजवान दीन की तकवियत का बायस है, अगर कोई दीन पे हर्फ आता है आपकी सरजमीन पर, तो आप दूसरों से बढ़कर बाहर निकलते हैं, दूसरों से बढ़कर दुश्मन के सामने डटने का और इस्तकामत का और मुकावमत का नारा लगाते हैं, दुश्मन को मैसेज भेजते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, अभी उस हदफ से बहुत दूर हो। अगर ना निकलें तो सूरत हाल दूसरी होगी। अब अगर रहबर मुअज्जम दीन की सरबलंदी की वजह से, इस किरदार की वजह से आईएसओ की तरफ देखते हैं, तो आप बावर रखिए कि जिस इमाम गायब के नायब हैं, क्योंकि कहते हैं खुद कि ये इनकलाब इस्लामी, ये हुकूमत अमानत है साहिब उज़्ज़मान की, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, ये उनकी अमानत है। और जिस दिन वो तशरीफ़ लाते हैं, ये अमानत खुदा करे कि हम इसकी हिफाजत कर पाएँ और इस अमानत को उनके सुपुर्द कर पाएँ। तो इसका सरबराह अगर आपकी तरफ उसकी तवज्जो है, तो मेरे भाइयों इस बात पे बावर कर लो कि इमाम ज़मान की भी तवज्जो फिर आप पर है। इसलिए नहीं कह रहा कि रहबर की क्योंकि तवज्जो है, लिहाजा बगैर किसी सबब के इमाम ज़मान की भी तवज्जो है। रहबर की यह तवज्जो जो मैंने बयान की, वो किसी सबब से है, किसी वजह से है, और वो ये कि वो सरजमीन पाकिस्तान पर आपको इस्लाम खालिस, इस्लाम नाब, मकतब अहले बैत का मुदाफे और डट जाने वाला पाते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो तकसीम होती है, जो चीज़ें वो अता करता है लोगों को, वो तकसीम अंधी तकसीम नहीं होती। इस बात के लिए भी आप बिरादरान की खिदमत में एक कुरानी आयत को बतौर गवाह बना दूँ, ये बताने के लिए, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करने के लिए कि ये जो आपको तौफीक मिली है, इसकी कदर जाने। चूँकि जो चीज़ खुदा देता है, अहलियत देख कर देता है, और अगर वो अहलियत इंसान खो दे तो अल्लाह वो तौफीक भी उससे वापस ले लेता। कई लोग ऐसे हैं कि जो आगाज़ करते हैं लेकिन बाद में उनके ख्यालात, उनके अफकार, उनकी मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस दीनी महफिल और इस दीनी तंजीम के अंदर शिरकत की तौफीक उनसे वापस ले लेता। ये बात कुरान ने बड़ी वाज़ह बयान की है। आयात आपके सामने एक या दो सूरह तौबा की बयान करने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। पसे मंज़र क्या है इन आयात का? पसे मंज़र ये है कि ग़ज़वा तबूक के लिए अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और खजूरों के भी काटने का मौसम था, तो बहुत सारे लोग न जाने के बहाने बना रहे थे, एक्सक्यूज़ अपनी ला रहे थे रसूलुल्लाह की खिदमत में, हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, हम नहीं जा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले के बारे में अपने रसूल को किन अल्फाज में गाइड किया, वही के ज़रिए तवज्जो फरमाई। एक सलवात पढ़ें फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मैं आयत नंबर 42-44 से शुरू कर रहा हूँ सूरह तौबा की, जल्दी जल्दी बयान करूँगा ताकि वक्त में ख़त्म हो सके। ला यस्तअज़िनुकल लदीन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ए रसूल, वो लोग के जो अल्लाह और उस और क़्यामत पर ईमान रखते हैं, वो आपसे इजाज़त नहीं मांगेंगे, पूछेंगे नहीं। किसके बारे में? अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम। आपसे आगे पूछेंगे नहीं कि हम अपनी जान और अपने माल से जहाद करें या ना करें, पूछेंगे नहीं, कहेंगे हमने करना है, हम हाजिर हैं। ऐसे ही है कि बाज़ औक़ात आप किसी की तरफ मेहमान जाएं और वो आपसे पूछे चाय पीनी है या नहीं पीनी, चाय का मूड है या, ये सवाल ही बता रहा होता है कि आपका मूड है या नहीं, उसका पिलाने का मूड पक्का नहीं है, अब चाय का मूड तो नहीं हो रहा। और एक दफ़ा कि आप जाते हैं और वो कहता है कि अब आप आए हैं तो चाय तो पी कर ही जाएंगे, ये दो स्टाइल है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ रसूल, जो अल्लाह और उस क़यामत पर ईमान रखते हैं वो आपसे आकर, यानी आपको सवाल नहीं करेंगे कि हम ये करें या ना करें, आपको हमारी खिदमत की, हमारी जान की, हमारे माल की ज़रूरत है या नहीं है, ये नहीं कहेंगे। कौन? जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। वो क्यों सवाल करेगा जब उसे ईमान है कि आखिरत में इस दुनिया से बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मेरे लिए रखा हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा नतीजा रखा हुआ, जिसे ईमान है। जिसे ईमान नहीं है वो फिर अपनी सारी सेफ साइड्स को देख कर कोई स्टेप लेता। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन का इल्म रखता है, जानता है उन्हें अच्छी तरह से। 45, इन्नमा यस्तअज़िनुकल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपसे इजाज़त तो सिर्फ वो लोग मांगते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान नहीं रखते। वो इस तरह बातें कर रहे हैं। वर्ताबत कुलूबुहुम, और उनके दिलों में शक है, उनके दिल शक का शिकार है अल्लाह और क़यामत के बारे में। फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और वो अपने इसी शक में तरद्दुद का शिकार है। तरद्दुद का मतलब क्या होता है? कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, एक जगह पर टिकता नहीं। 46, ये वो आयत है जो मैं आपको असल में सुनाना चाहता था, ये बताने के लिए कि तकसीम, तौफीकात की तकसीम अल्लाह करता है काबिलियत देखकर। बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये 43, 44, 45, 46 आयात आप ख़ुद भी जाके सूरह तौबा में देखें और पढ़ें। अब ये जो रसूलुल्लाह को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर और नहीं गए सफ़र पर, ग़ज़वा तबूक के सफ़र पर नहीं गए, बच गए, ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझ रहे थे कि हमने चक्कर दे दिया और वो चक्कर में आ गए। हमारे झूठे एक्सक्यूज़ को उन्होंने सच्चा तस्लीम कर लिया, और हमें अब हम पर कोई बुराई भी नहीं आएगी, यानी रसूलुल्लाह हमें समझ रहे हैं कि बीमार है इसलिए नहीं जा रहा, बच भी गए और हमारा राज भी नहीं खुला। हम कितने चालाक हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, हमने बड़ा तेज ज़बरदस्त तरीके से अपना टारगेट अचीव कर लिया, हदफ अचीव कर लिया, ये वो समझ रहे थे। जो मैं बात कर रहा हूँ, हम सब इसको खुद पर अप्लाई करें। अगर कोई दीनी काम की तौफीक मिली है और मैं सुस्ती कर रहा हूँ और अपने दीनी दोस्तों को कोई चक्कर दे दूँ, कोई बहाना ऐसा बना दूँ और फिर कहूँ कि शुक्र है जान छूट गई, ये खुद ही जाएंगे और मैं जो एक्सक्यूज़ दिया उसको कबूल करके मुझे भी बुरा नहीं समझेंगे और मेरी जान भी छूट गई। ये सिमिलर सिचुएशन है जो कुरान बता रहा है। अब अल्लाह अपने रसूल को बता रहा है कि इनके साथ हुआ क्या है। ये जो समझ रहे हैं बड़े तेज़ हैं, इनको एक्चुअली नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या, पस पर्दा मसला क्या। सुनिए सूरह तौबा आयत नंबर 46, वलौ अरादुल खुरूज, ए रसूल, अगर इन्होंने आपके साथ खुरूज यानी मदीने से निकलने की तैयारी की होती, लअअद्दू लहू उद्दतन, अगर इनका इरादा होता निकलने का तो इन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी की होती। इनकी किसी हरकत से आपको लगेगा ही नहीं कि कोई सफर दरपेश है, इन्होंने नहीं जाना। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, ये जो आपके साथ नहीं जा रहे, ये ना समझें कि ये नहीं जा रहे, तवज्जो कीजिए, लेकिन असल मसला ये है कि अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि ये आपके साथ जाए। ये समझ रहे हैं हमने चक्कर दे दिया है बच गए सफर से, लेकिन असल मसला यह है कि अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि ये गंदे लोग, ये सुस्त लोग, ये कामचोर गैर जिम्मेदार ये आपके साथ जाए इस सफर पर, खुदा ने पसंद नहीं किया। फसबतहुम वकीलक उदूम अल कायदीन, तो अल्लाह ने इनको बिठा दिया, रोक दिया और कहा गया कि तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठ जाओ। और बैठे रहने वाले कौन होते हैं? कमज़ोर, बीमार, बूढ़े, बच्चे, औरतें, तुम इनकी कैटेगरी में इनके साथ बैठे रहो। जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जान और माल के साथ बाहर निकलना है, अल्लाह ने पसंद ही नहीं किया कि ये लोग जाएं। क्यों पसंद नहीं किया? इनके अंदर की अपनी खराबी और गलाजत की वजह से। बस याद रखिए दोस्तों, अगर अल्लाह ने आपको कोई तौफीक दी इस दीन की, मकतब की खिदमत की, और आप कर रहे थे अचानक उस दीन की खिदमत के बारे में आपके दिल में सुस्ती आ रही है, अब आपके अंदर मसलन आपको वो जज्बा फील नहीं होता जो पहले फील हो रहा था, सुस्त होते जा रहे हैं, तो ये ना समझे कि कुछ नहीं हो रहा। जब कोई दावत देने के लिए आए, आप अपनी कोई एक्सक्यूज दे देते हैं, मुझे ये मसला है, मैं नहीं शिरकत कर सकता, मैं ये खिदमत पेश नहीं कर सकता, तो ये ना समझिएगा कि ये मैंने किया है, बल्कि कुरान ये गवाही दे रहा है कि जब खुदा तौफीक दीन की खिदमत की छीनता है तो वो इसलिए छीन लेता है कि बंदे के अंदर कोई ऐसी खराबी आ गई होती है जिसके बाद अल्लाह उसको इस काबिल ही नहीं समझता कि वो उससे अपने दीन का काम ले। तो अगर खुदा ने आपको तौफीक दी है, इसकी कदर शनासी करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं आयत नहीं पढ़ता लेकिन इशारा कर दूं, इससे अगली आयत में अल्लाह ये फरमाता है कि क्यों अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जो अलीम उन बिदात सुदूर है, कि ये जो यहाँ इतने बहाने बना रहे हैं और यहाँ चक्कर दे रहे हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर अगर आपके साथ होंगे तो आपके साथियों को भी अपनी बातों से ख़राब ही करेंगे, उनके हौसले भी पस्त करेंगे, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाएंगे, शकूक व शुबहात डालेंगे, लिहाजा अल्लाह ने पहले ही फिल्टर लगाकर इनको आपके साथ से अलग कर दिया है। अल्लाह छांटी करता है और जिसमें काबिलियत देखता है उसको तौफीकात अता करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हम उस आयत की तरफ आए कि जो मैंने शुरू में आपके सामने तिलावत की थी। ये आयत और इसके बाद वाली जो आयत हैं, ये ग़ज़वा उहद के पस मंज़र में नाजिल हुई। ग़ज़वा उहद का आप सबको मालूम है, रसूलुल्लाह 1000 साथियों के साथ मदीना से निकले थे, मुशरिकीन मक्का 5000 की तादाद में थे, और मज़ीद सितम ये हुआ कि जब रसूलुल्लाह 1000 साथियों के साथ निकले तो 300 छोड़कर वापस चले गए, मुनाफिकीन थे। बहाना बनाया किसी बात का, हमारी राय पर अमल नहीं किया रसूलुल्लाह ने, अंदर मदीने में याद नहीं आया। जब ऐन दुश्मन के सामने आ गए, कहते हैं हम नाराज़ हो गए, हम रूठ के जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि हमारी बात नहीं मानी रसूलुल्लाह ने। 300 बंदा चला गया, 700 बमुकाबला 5000। अल्लाह ने वादा किया था कि अगर तुम निकलोगे अल्लाह तुम्हें फतह देगा। तो बहरहाल ये 700 रसूलुल्लाह के साथ मैदान में आए और खुदा ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ, और पहले ही हमले में वो 5000 का लश्कर उनके कदम उखड़ गए और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन फिर मसला खराब हुआ कब? जब कुछ लोग, जिनकी अल्लाह के रसूल ने एक ड्यूटी लगाई थी कि तुमने यहां से नहीं हिलना, कुछ हो जाए तुमने अपनी पोजीशन पर जा, मैं तुम्हें मामूर करके जा रहा हूं, तुमने यहां से नहीं हिलना, तुमने नहीं हिलना। तो जब कुफार का लश्कर भाग गया और जो नीचे थे मुसलमान, उस लश्कर ने माल गनीमत उनका जमा शुरू करना शुरू किया, तो ये जो ऊपर 50 खड़े थे, इनके दिल में भी माल गनीमत की मोहब्बत ने जोश मारा। ये वो बात है जिसकी अल्लाह ने खुद कुरान में गवाही दी है, फरमाया मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से कुछ ऐसे थे जो दुनिया चाहते थे और कुछ तुम में से ऐसे थे जो आखिरत चाहते थे। वो जो आखिरत चाहते थे वो रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहीं पे खड़े रहे और सब शहीद हो गए, और जिनको दुनिया की याद ने सताया वो उस पहाड़ी टीले से नीचे उतरे, दुश्मन ने पीछे से हमला किया, इसीलिए अल्लाह के नबी ने खड़ा किया था इनको, लेकिन चूंकि तादाद कम हो गई थी तो मुसलमानों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। रिवायात के मुताबिक कम से कम 72 अफराद मुसलमानों के शहीद हुए गज़वा उहद में, खुद अल्लाह के नबी ज़ख्मी हुए, दंदान मुबारक शहीद हुए, पेशानी ज़ख्मी हुई। ये सारी सिचुएशन क्यों पेश आई? हुब्ब दुनिया की वजह से, कुछ लोगों की दुनिया की मोहब्बत की वजह से। उन्होंने दुनिया की मोहब्बत उन पर ऐसी आई कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म की तावील की। अब बाज़ औक़ात बंदा ये नहीं कहता मैं रसूलल्लाह की बात नहीं मानता, बल्कि कहता मैंने ये काम तो करना है, तो अब रसूलल्लाह का फरमान कुछ और है, तो ये नहीं कहता मैंने नहीं माना, तावील करता है। तावील बहुत ख़तरनाक छुरी है। जिस तरह किसी ने यह तावील की थी कि अम्मार का कातिल वो है जो अम्मार को लेकर हमारे नेज़ों के सामने आया, ये तावील, हदफ कुछ और है, अब उसके रास्ते में इस्लाम का हुक्म रुकावट है, उस हुक्म की तावील करो ताकि फिर ये गलत काम भी आराम से कर सको। तो ये नुकसान हुआ। इस जंग के बाद बहुत सारी इबरतें थी, बहुत सारी आयतें सूरह आले इमरान में, ये आयत जो आपके सामने मैंने शुरू में पढ़ी, ये मुसलमानों को उम्मीद का पैगाम दे रही है ता क़यामत, मुझे आपको, कि आज आप ये ना देखो कि जनाब फलान सुपर पावर है और जनाब पूरा यूरोप उनका इतिहादी है और जनाब इसराइल, अभी आपने अगर अमेरिका के इलेक्शंस में देखे हों बयानात, जो अभी सदर बना है जो बाइडन, और उसकी वो जो नायब सदर है, उस नायब सदर खातून क्या कह रही थी, तवज्जो सुनिएगा, इसराइल की क्यों हिमायत करते हैं? अल्लाह इसी सूरह आले इमरान में फरमाता है कद बदतल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, खुदा तुम्हें बता रहा है कि यकीनन उनका जो तुम्हारे बारे में बुग्ज है वो उनकी जुबानों से जाहिर हो चुका है, तुमसे वो बुग्ज रखते हैं, नफरत करते हैं, ये उनकी जुबानों से जो बातें निकल रही हैं उसमें जाहिर हो चुका है। वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो उनके सीनों के अंदर छुपा हुआ है वो इससे भी ज्यादा है जो तुमने सुना है, जो जाहिर हुआ है उनका बुग्ज उससे कई ज्यादा तुम्हारी नफरत और बुग्ज इन लोगों के सीने के अंदर है। उसकी एक मिसाल आपको दे रहा हूं, वो क्या अपने बयान में कहती है, कहती है अमेरिका को इसराइल के साथ डट कर पूरी ताकत के साथ खड़ा होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि इसराइल की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी की गारंटी है। किससे सिक्योरिटी? मुसलमानों से। हमने गोया के जहाने इस्लाम के अंदर अपनी फौजी छावनी कैंटोनमेंट बना दी है कि जो वहां रहकर वो किरदार अदा कर रही है कि हम मुसलमानों के शर से यहां बचे हुए। ये निगाह है उनकी इसराइल के बारे में, यानी उनकी अपनी फौजी छावनी है। अब ये सब जहान की जब ये हालत है तो हम क्या करें? इतने ज्यादा लोग आ गए, अब हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जैसे कुरान कहता है अल्लदीन قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم, कि मोमिन वो है, रसूल के साथी वो है कि जिनसे जब कहा जाता है इतने लोग जमा होकर आ गए तुम्हें मारने के लिए तो इनसे डरो वरना मारे जाओगे, فزادتهم ایمان, उनके ईमान और बढ़ जाते हैं, और वो कहते हैं وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, कहते हैं हमें अल्लाह काफी है, सारी दुनिया हमारे सामने आ जाए। तो वही अल्लाह जिस अल्लाह पर ये तवक्कुल करते हैं वो इनसे क्या कह रहा है गज़वा उहद के बाद और हम सब से हर जमाने में, वला तहिनू, कमजोर मत पड़ो। ठीक है तुम्हारी गलती से जंग में नुकसान हो गया, तुम्हें जख्म लग गए, शहीद हो गए, लेकिन अब सारी उम्र इसको लेके बैठे रहोगे? नहीं, डट जाओ फिर। वला तहिनू, कमजोर ना पड़ो, वला तहजनू, और गमजदा भी ना हो। थोड़ी देर के लिए मसला हुआ है, अब उसको लेके सारी उम्र बैठे रहोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आगे सारा भी खराब कर दोगे। न कमजोर पड़ो और न गम करो, वह अंतुमुल आलम, और ये अल्लाह कह रहे हैं
ना तुम कमजोर पड़ो, ना गम को लेके बैठ जाओ, तुम ही आला होगे, तुम ही बरतर होगे। अल्लाह ने बरतरी तुम्हारे लिए लिख दी है, अल्लाह तुम्हें कह रहा है। शर्त यह है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। जैसे वहां पे फरमाया ना, कुरान देखिए बहुत बहुत दकीक है, बहुत एक्यूरेट है। अभी सूरह तौबा की आयत में क्या फरमाया था कि ए रसूल, जो अल्लाह और कियामत पर ईमान रखते हैं वो कभी आपसे आकर सवालिया अंदाज में नहीं कहेंगे कि हम जिहाद पे जाएं या ना जाएं, हमारी सर्विसेज की जरूरत है या नहीं है। वो कहेंगे हमने जाना ही जाना। और बताया है, उनकी भी गवाही दी है कि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला उनको जानता है कि जो आपके पास आते हैं और उनके पास कोई सवारी भी नहीं, और वो आपसे कहते गरीब लोग हैं कि या रसूलुल्लाह हमें कोई चीज दीजिए, हमने आपके साथ जाना है, और आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है कि जिसके जरिए तुम्हें ले जा सकूं, तो वो इस हालत में पलटते हैं कि उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं कि हम साथ क्यों नहीं जा रहे। ये ईमान की अलामत, इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह कह रहा है। याद रखिए, आज अगर मुसलमान इतनी कसरत में हो जाने के बावजूद ज़बूं हाली का शिकार है, पस्ती का शिकार है इन अकवाम के सामने, उसकी सबब क्या है? अल्लाह की बशारत और खुशखबरी मौजूद है क़यामत तक, उसकी शर्त हमने पूरी करनी है, उसका क्राइटेरिया हमने पूरा करना है। और वो क्राइटेरिया क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकी मोमिन हो तो फिर खुदा तुमसे वादा कर रहा है, फिर गम नहीं करो, फिर कमजोर नहीं पड़ो, डट जाओ, तुमको अल्लाह फतह अता करेगा। आप पूरी दुनिया में देखें, इस वक्त जो मकतब और जो निजाम इस आलमी कुफ्र और इस्तेमार और इस्तकबार के सामने डटा हुआ है, वो मकतब अहले बैत की बुनियाद पर कायम शुदा निजाम है कि जो दुनिया के हर मुस्तकबिर को और आलमी इस्तेमार को उनके आगे झुकने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। हैहात मिन्नत दिल्ला का शुआर जिसने अपने आका और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ इसी बात पर कि ये जो मकसद है हिमायत मजलूमीन जहान, ये मौला की वसीयत है मेरे और आपके मौला की, जालिम के मुखालिफ और मजलूम के हामी बनना, और जालिम जितना भी ताकतवर हो अगर मेरे आपके अंदर ईमान है तो हमें अल्लाह ताला की ये बशारत और खुशखबरी, इस पर भी ईमान होना चाहिए और इस पर यकीन होना चाहिए, और इसको हमें लम्स करना चाहिए कि हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, हमें उम्मीद नहीं तोड़नी, क्योंकि उम्मीद वो तोड़े कि जिसका हामी कमज़ोर हो और अल्लाह से ताकतवर हामी कोई नहीं है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कमज़ोर न पड़ो, गम न करो, तुम ही बरतर रहोगे अगर तुम हकीकी मोमिन हो तो। परवरदिगार आलम आप सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए, और ISO के इस अजीम और बाबरकत कारवान को मज़ीद अल्लाह ताकत अता फरमाए, और मज़ीद इसके परचम को और मज़ीद इसके हदफ़ को, ISO की सरगर्मियों को अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमतों और बरकतों के साए में इनमें इजाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।